इशिका इस वक्त मर्चेंट फैमिली की लैब के चेंजिंग रूम में थी। वो जल्दी जल्दी अपने बालों में लगे हेयर क्लिप से ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर वहां सेट कर रही थी। अभिमन्यु अपनी प्लानिंग के साथ आया था, तो इशिका भी बिना किसी प्लान के वहां नहीं आई थी। डिवाइस सेट करने के बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसे वो वक्त याद आ गया जब वो पार्टी में अकेली ऊपर कमरे में थी। अभिमन्यु के जाते ही इशिका ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सबसे पहले दिशांक को कॉल किया। जब से अर्पित ने दिशांक पर हमला किया था, उसके बाद से इशिका उससे ठीक से बात नहीं हुई थी। दिशांक ने कॉल रिसीव करते ही इशिका ने तुरंत पूछा, तुम ठीक हो ना दिशांक? आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए। कम ऑन मैम, आप कब से मुझे सॉरी बोलने लग गई? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिशांक ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, मेरी मिस्टर चौहान से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि आज मिस्टर राजवंश सबके सामने आपके जिंदा होने की सच्चाई बताने वाले हैं। मैम, ये सेफ नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने के बाद मर्चेंट फैमिली आपके पीछे हो जाएगी। मैं जानती हूँ, लेकिन उनकी सच्चाई पता लगाने के लिए उनके सामने आना ही होगा, वही हमें माँ तक पहुँचा सकते हैं, इशिका ने परेशान स्वर में कहा। उस वक्त तक अभिमन्यु और इशिका अंजलि से नहीं मिले थे। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि अर्पित और आदित्य इस पार्टी में मौजूद हैं। दिशांक का मूड हल्का करने के लिए इशिका ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा इन सब को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम पार्टी में आ रहे हो क्या? बस कुछ देर में ही पहुंच जाऊंगा, मुझे आज ही डिस्चार्ज मिला है और उसने मुझे इतना मारा था कि मेरा चेहरा अभी भी थोड़ा सूजा हुआ है, पर मेरा आपसे मिलने को मन कर रहा है। अब इसके लिए मैं इतना सैक्रिफाइस तो कर ही सकता हूँ, दिशांक ने हल्के तरीके से कहा, जिस पर इशिका हल्का सा मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर अगले आधे घंटे में मिलते हैं, दिशांक ने उसे बाय कहते हुए कहा। दिशांक कॉल कट करने से पहले इशिका ने जल्दी से कहा, सुनो दिशांक, मुझे तुमसे कुछ काम है। कम से कम पार्टी तो एंजॉय करने दीजिए मैम, दिशांक मुंह बनाकर बोला। पार्टी भी एंजॉय कर लेना, याद है तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम किसी ऐसे लड़के को जानते हो जो टेक्निकल डिवाइस बनाता रहता है? वो दिल्ली से ही है ना? न जाने क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, राजवंश फैमिली भी मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है, ऊपर से मर्चेंट फैमिली भी हमारे पीछे पड़ी हुई है, इशिका ने अपनी परेशानी दिशांक को बताई। मैं समझ के आपको क्या चाहिए, डोंट वरी, हम सब आपकी आंखों के सामने ही रहेंगे, अब सब ठीक होने वाला है, आप बेवजह घबरा रही हैं, दिशांक ने उसे समझाते हुए कहा। इशिका के साथ रहते हुए वो उसे काफ़ी अच्छे से जानने लगा था, वो समझ गया था कि इशिका को इस वक्त क्या चाहिए था। दूसरे तरफ से इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया, तो दिशांक ने गहरी सांस ली और कहा, आपको समझाना सच में इम्पॉसिबल है, ठीक है मैं कुछ ट्रैकिंग डिवाइस लेकर आ जाऊँगा, जो कि बहुत छोटे होने की वजह से आप ईजिली उसे हाइड करके रख सकती हैं। अब तो पार्टी एंजॉय कीजिए, प्लीज़ अपना मूड ठीक कीजिए, आपके मिस्टर राजवंश को आपसे कोई चुरा कर नहीं ले जाएगा। थैंक यू सो मच दिशांक, हमेशा मेरा साथ निभाने के लिए, इशिका ने मुस्कुराकर कहा और फिर कॉल कट कर दिया। पार्टी में जब दिशांक आया था, तब किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। इसकी वजह थी कि इशिका को अर्पित के वहां होने का पता चलते ही उसने दिशांक को सबकी नज़रों से बचकर छिपने के लिए कहा था। दिशांक ने इशिका को कुछ ट्रैकिंग डिवाइस दे दिए थे, किसी ने नहीं सोचा था कि आज वे इस तरह काम आएंगे। चेंजिंग रूम से बाहर आकर इशिका ने एक नज़र आसपास दौड़ाते हुए कहा, उम्मीद है दिशांक अब तुम मुझ तक जल्दी पहुंच जाओगे। सब कुछ दिशांक के भरोसे छोड़कर इशिका चेंजिंग रूम से बाहर अपना चेकअप करवाने के लिए चली गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ डिवाइस के ऑन होते ही दिशांक को इशिका की लोकेशन मिल गई थी। उसे देखते ही दिशांक ने अपना सिर पकड़ लिया, वो हैरानी से बोला, हे भगवान, ये इतनी दूर इस रेगिस्तानी इलाके में क्या कर रही है? लोकेशन सर्च करके देखता हूँ, आखिर ये है कहाँ पर? दिशांक ने जल्दी से इशिका की करंट लोकेशन निकाली, तो वो एक आइलैंड था जो इंडिया से काफ़ी दूर था। उस अनजान आइलैंड के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, शायद ही तभी मर्चेंट फैमिली अब तक वहां छुपकर आराम से रह पा रही थी। मुझे इसी वक्त मिस्टर चौहान को इस बारे में बताना होगा, दिशांक ने कहा। पृथ्वी को कॉल करने के बजाय वो अपना लैपटॉप लेकर अभिमन्यु के घर ही पहुंच गया था। पृथ्वी वसुधा के साथ अभिमन्यु के दिल्ली वाले घर में था। राजवंश फैमिली वसुधा के साथ रुकना चाहती थी, पर वसुधा ने उन सबको वहां से भगा दिया था। दिशांक लगभग शाम के करीब उनके घर पहुंचा, पृथ्वी वसुधा जी के साथ बाहर बैठकर चाय पी रहा था। उसे देखते ही वसुधा ने पृथ्वी से पूछा, ये लड़का तो वही है ना जो बहू के लिए काम करता है, ये परेशान लग रहा है, सब ठीक है ना? हाँ दादी सब ठीक है, एक्चुअली ये मिसेज राजवंश का काम संभाल रहा है, तो हो सकता है उसमें ही कोई प्रॉब्लम आई होगी, मैं जाकर बात करता हूँ, पृथ्वी ने वसुधा जी से सब छुपाते हुए कहा। ठीक है, उसकी मदद करना और मेरी बहू की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं नहीं चाहती कि उन्हें अपने हनीमून को छोड़कर बीच में आना पड़े। इसे कहना कि बहू को कॉल करके परेशान ना करें, मैं खुद उन्हें कॉल नहीं कर रही हूँ, वसुधा जी ने पृथ्वी को सब समझाते हुए कहा। पृथ्वी ने उनकी बात पर हामी भरी और जल्दी से दिशांक के पास आया। उन्होंने देखा वसुधा निवेदिता के साथ अपने कमरे में जा रही थी। उनके वहां से हटते ही पृथ्वी ने जल्दी से कहा, कुछ अपडेट मिली मिस्टर राठौर? कुछ नहीं,
बहुत बड़ी अपडेट मिली है मिस्टर चौहान, मैंने उनकी लोकेशन का पता कर लिया है। हमें जल्द से जल्द पुलिस और अपने आदमियों के साथ वहां पर जाना चाहिए। यहां से काफी दूर है, हमें वहां पहुंचने में ही एक हफ्ते का टाइम लग जाएगा। न जाने इतने दिनों में वहां क्या कुछ हो जाए, दिशांक ने हड़बड़ाहट में कहा। उसे ईशिका की बहुत परवाह हो रही थी। दिशांक और प्रिक्सी अभी भी पूरी तरह नहीं जानते थे आखिर मर्चेंट फैमिली करती क्या है। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, आपका कहना सही है, पुलिस को हम तभी इन्वॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास कोई सबूत हो। हम तो ये तक नहीं जानते कि आखिर मर्चेंट फैमिली करती क्या है। पृथ्वी का कहना भी सही था, दुनिया की नजरों में राधिका उनकी बेटी थी। अगर वो मर्चेंट फैमिली के पास मौजूद थी तो ये किसी तरह का क्राइम नहीं था। इस बात को लेकर भी वे श्योर नहीं थे कि जरूरत पड़ने पर राधिका अपनी फैमिली के खिलाफ किसी तरह की गवाही देती है या नहीं। वे लोग बातें कर रहे थे तभी एक सख्त आवाज आई, तुम लोग नहीं जानते लेकिन मैं सब जानता हूँ, और हाँ, वे जो भी करते हैं वो पूरी तरह इलीगल है, तो पुलिस हमारा साथ जरूर देगी। पृथ्वी और दिशांत ने हैरानी से पीछे पलट कर देखा तो वहां केशव सिंघानिया खड़े हुए थे। उन्होंने उनकी पूरी बातें सुन ली थी। अंजलि ने जिस दिन आदित्य और अर्पित के बारे में केशव को बताया था उसी दिन से केशव ने अपनी तरफ से जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी थी। उसे भी कुछ पता चला था इसीलिए वो वहां पर आया था। केशव ने उनके पास आकर कहा, इंडिया में उनके खिलाफ भले ही कोई केस ना हुआ हो लेकिन इंडिया छोड़ने के बाद वे ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया से न्यूयॉर्क, जहां दोनों ही जगह पर उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट के लिए इजाजत मिल गई थी। उनके एक्सपेरिमेंट वहां पर बुरी तरह फेल हुए थे और गवर्नमेंट का पैसा डूब गया था। मर्चेंट फैमिली बहुत रिच और पावरफुल है, उन्होंने पैसों से उनका मुंह तो बंद करवा दिया था लेकिन सब्जेक्ट के फैमिली मेंबर्स आज भी उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। उनके खिलाफ हमें इंडिया या दूसरे देशों में भी सैकड़ों केस दर्ज मिल जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, फिर तो हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना चाहिए, दिशांक बोला।
पहले पृथ्वी और दिशांक अकेले थे लेकिन अब उन्हें केशव सिंघानिया का साथ मिल गया था। केशव की ऊंची पहचान के चलते उन्हें पुलिस से डायरेक्ट सिक्योरिटी लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। वहीं उनसे अलग इशिका के सारे चेकअप हो चुके थे। इस वक्त इशिका और अभिमन्यु राधिका के साथ डाइनिंग टेबल पर थे। वहां पर आदित्य, गौतम और अर्पित भी मौजूद थे। कहने को ये एक फैमिली गैदरिंग थी लेकिन सब चुपचाप बैठे हुए थे, कोई खाने का एक निवाला भी नहीं खा रहा था। तो गौतम ने कड़क आवाज में कहा, हम सब एक परिवार हैं, तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कोई मर गया हो? इतने सालों बाद सब साथ आए हैं, मैंने तुम सबके लिए इतना अरेंजमेंट किया है और तुम लोग कुछ नहीं खा रहे। मुझे भूख नहीं है, राधिका ने कहा, उसकी नजरें झुकी हुई थी। आज भी उतनी ही जिद्दी हो, गौतम ने सिर हिलाकर कहा। ऐसा लग रहा था कि वो यहां सबको खुश करने के लिए नहीं बल्कि सबको हर्ट करने के लिए लेकर आया था। उसने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और फिर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो आज का दिन खास होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी के सारे इनिशियल टेस्ट हो चुके हैं। कुछ दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट चालू कर सकते हैं। जैसे ही गौतम ने कहा, राधिका ने जलती हुई निगाहों से उनकी तरफ देखा तो बाद में इशिका की तरफ। राधिका ने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएगी, आप हमें जीने के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? अपने ये घटिया एक्सपेरिमेंट किसी और के ऊपर जाकर कीजिए ना। किए थे लेकिन अफसोस कामयाब नहीं रहा। कुछ खास बात है हमारी फैमिली जीन्स में जो हमारे फैमिली के एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल रहते हैं। हाँ, इसमें केशव और अंजलि का नाम भी जुड़ा हुआ है, पर उनके अलावा आज तक कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, गौतम ने अफसोस जताते हुए कहा। आप जानते हैं कि आपके इस घटिया एक्सपेरिमेंट से लोगों की जान जा सकती है, फिर भी आप मेरी बेटी के साथ ये सब करना चाहते हैं? मैं आपको कभी ऐसा नहीं करने दूंगी, राधिका ने तेज आवाज में कहा। फिर उसने उम्मीद भरी निगाहों से अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। इशिका चेकअप के बाद थोड़ी देर आराम करके डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पर आई थी। इस बीच में वो अभिमन्यु से नहीं मिली थी। अभिमन्यु उससे नाराज था, इस वजह से उसने उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। इशिका ने भी सबके सामने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। वहां कोई बड़ी बहस ना हो इसलिए इशिका ने अपनी प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, आप लोगों को बहस करनी है तो करते रहिए, मुझे भूख लगी है, मैं शुरू कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी काफी समझदार है राधिका, कुछ सीखो इससे, अर्पित ने सार्कास्टिकली कहा और फिर अपनी प्लेट में खाना सर्व करने लगा। आदित्य ने राधिका के पास अपनी चेयर खिसकाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, हमारे फैमिली जीन्स अलग हैं, तुम बेवजह घबरा रही हो। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है, नफरत है मुझे आप सबसे, राधिका ने बेरुखी से कहा। वो वहां से उठकर जाने लगी तभी गौतम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। लड़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, तुमने पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है, अब तुम्हारी बेटी आ गई है तो कम से कम इसके लिए तो खुद को मजबूत रखो, गौतम ने जबरदस्ती राधिका को वहां बैठाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर राधिका ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा जो मासूमियत से खाना खाने में लगी हुई थी, मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ना हो। राधिका ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करने लगी। वहां बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। इस बीच एक बटलर कुछ पेपर्स के साथ वहां पर पहुंचा। पेपर्स को देखते हुए गौतम ने इशिका की तरफ देखकर सख्त अंदाज में कहा, ये लो, तुम्हारी शुरुआती टेस्ट की कुछ रिपोर्ट तो आ भी गई है, मुझे चेक करने दो, सब ठीक है ना? बाकी तुम्हारी इन्फ्यूजन का इंतजाम मैंने कर दिया है, तुम कल करवा सकती हो। इतना कहकर गौतम ने इशिका की रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी, उनके चेहरे पर चमक आ गई, मानो जिस चीज की उन्हें तलाश थी वो अब पूरी हो गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले चैप्टर पर मिलते हैं। इस कहानी के बहुत कम पार्ट बाकी हैं, तो प्लीज आप मेरी दूसरी कहानी पढ़ना शुरू कर दें, उसके पार्ट रोजाना आ रहे हैं।